ஸ்ரீகோவிந்தம் பிரபத்யேஹம் தீனானுக்ரஹகாரகம் வந்தே முகுந்தமரதங்கதலாயகாக்ஷம் குந்தோந்து சங்கதசனம் சிசுகோபவேஷம் இந்திராதிதேவகணவந்திதபாதபீடம் வசுதேவசூலவரணம் சம்பகோதுபாசிகரணம் விகசிதநலினாசியம் விஸ்ஃபுரன்மந்தஹாசியம் கனகருசிதுகூலம் சாருவர்ஹாவசூலம் கமபி நிகில சாரன் கோபி குமாரன் வம்சீ விபூஷித கராநவநீரதாத் சீதாம்பராதுர்மிகுந்தபலாதரோஷ்டாத் பூரணேந்து சுந்தர முகாதரவிந்த நேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்துவமஹம்னதானோம் தியானாத்யாஸ வசீக்ருதேன மனசா தன்னிர்குணம் நிஷ்க்ரியம் ஜோதிக்கிஞ்சனோதினோயிபரம் பசியந்தி பசியந்தி தே அஸ்மாக்கம் துதவோலோசனசமத்காராய பூயாசிரம் காலிந்தீ புலினேஷுயத் கிமபி தன்னீலம் மகோபாவதி ஸ்ரீராமவசவே ஜகஜானீ கரோ பிரணாமி ஜோதிபாலீ சமஸ்த சராசர் விஸ்வ கே ரூப் மே வியாப்த அபிவ்யக்த பகவான் கே சரண கமலோ மே சாகர் சபக்கு நமஸ்கார். கிசி வஸ்து கீ பிராப்தி கி இச்சா ஹோத்தி ஹை ஓர் வோ வஸ்து பரி ஆவஷ்யக் ஹோத்தி ஹை உஸ்கே நமிலனே பர் துக் ஹோதா ஹை யே ஸ்வாபாவிக் ஹை. அனாவஷ்யக் வஸ்து ஹை மிலி ந மிலி மில் கயி கோதூஹல் ஸே படா அச்சா ந மிலி தோ கோயி ஹர்ஜ் நஹி துக் நஹி ஹோதா. பர் ஜோ வஸ்து ஆவஷ்யக் ஹை ஜோ வஸ்து ஜீவன் மே ஜரூரி ஹை ஜிஸ்கே பினா காம் நஹி சல்தா ஜிஸ்மே அத்யந்த மன் கி போதி ஹை ஐசி வஸ்து கே நமிலனே பர் துக் ஹோதா ஹை. ஏக் சஜ்ஜன் நே பூச்சா கி சாதன கர்த்தே இத்தனே தின் பீத் கயே நா பகவான் கா பிரேம் பிராப்த ஹுவா நா பகவான் பிராப்த ஹுவே க்யா காரண ஹை ஆகே பூச்சா. தோ காரண தோ பகவான் ஜானதே ஹை அப்னே ஜானதே ஹோ நே க்யா பதாயே. லேக்கன் மேனே உன்சே பூச்சா கி பகவான் கே நா மில்னே கா ஆப்கோ துக் ஹை க்யா ஓர் பிரேம் ந மில்னே பர் சித்தமே ஆப்கோ அத்யந்த பேச்சேனி ஹை க்யா. தோ யே லோக் கபி கபி தோ ஹோத்தி ஹை ஹோத்தி ஹை படா அச்சா ஹை லேக்கன் ஆப்னே கோயி வியாபார் கியா ஹோதா உஸ் வியாபார் மே ஆப்னே சோச்சா கி இத்தனா நஃபா ஹோகா ஓர் உஸ்மே காட்டா ஹோ கியா தா. தோ ஜேசி ஆப்கோ பேச்சேனி ஹோத்தி ஹை வைசி பேச்சேனி ஹை க்யா பகவான் கே ந மில்னே மே தோ கா வைசி தோ நஹி சச்சே ஆத்மி பகவான் கா பிரேம் ந மில்னே மே வைசி பேச்சேனி ஹை க்யா தோ கா வைசி தோ நஹி ஹை. தோ ஜப் சம்சார கி வஸ்துவோ கே ந மில்னே பர் ஜேசி பேச்சேனி ஹோத்தி ஹை வைசி பேச்சேனி பகவான் கே ந மில்னே பர் நஹி ஹோத்தி. तो भगवान की जैसी चाह होनी चाहिए वो चाह हमारे अंदर पैदा नहीं होगी. इनने कहा तुम बड़ी सीधी बात बताते हो. आज की बात है. इनने कहा तुम बड़ी सीधी बात कहते हो भगवान का मिलना सुलभ बताते हो. इतने दिन हमको नहीं मिले. इनने कहा सुलभ इसलिए बताते हैं कि भगवान कर्म का फल नहीं है, भगवान चाह का फल है। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, भोग पदार्थ, अवस्थाएं, स्थितियां, प्राणी, ये सब के सब मिलते हैं कर्म से। वैसा कर्म पहले बना हुआ होता है तब उनका वैसा फल मिलता है। प्रत्येक संसार के पदार्थ की स्थिति की अवस्था की प्राप्ति में कर्म अपेक्षित है, चाह से नहीं मिलता। धन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह कौन नहीं करता, तो सबको मिलते नहीं ना। अनन्य चाह करते हैं लोग, रोते हैं, रात दिन रोते हैं, देवता मना उत्खात हम ढाचा देव धातु। उन्होंने कहा क्या नाम भर्तृहरि कि धन के लिए जमीनें खोदी, बत्तियां फूकी, प्रसाद बना लेंगे, कुछ हुआ हवाया नहीं। इतना परिश्रम करने पर भी, चाह करने पर भी भगवान धन नहीं मिलता, पर भगवान चाह करने पर मिल जाते हैं तो भगवान का मिलना सहज हुआ कि नहीं, इस दृष्टि से सहज है। पर आपने धन की जितनी चाह की उतनी भगवान की ये आप मानते हैं क्या, गलती भी नहीं की। तो जब चाह ही नहीं है आपको तो भगवान को आपके मिलने की क्या परवाह है, आप शरीर से लाखों भटकते हैं। भगवान चाह करने वाले को मिलते हैं सत्य है, ये नहीं देखते कि वो भटक रहे हैं, चाह करने वाला कौन है, ये उनकी दया है। ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है कि शानदार है, ये नहीं देखते कि ये पुरुष है कि स्त्री है, ये नहीं देखते कि विद्वान है कि मूर्ख है, और वो नहीं देखते कि इसके अब तक के जीवन के इतिहास में पाप या पुण्य है। परंतु चाह तो देखते हैं ना, और चाह है और नहीं मिले तो उसका चाहे कि नहीं, इसकी कसौटी है, न मिलने पर दुख भयानक होता है कि नहीं। तद विस्मरण परम व्याकुलता, भगवान का स्मरण भूलता नहीं। क्यों नहीं भूलता, कि भूलते ही व्याकुलता आ जाती है, इसलिए नहीं भूलता। तो जिस वस्तु के मिलने पर अत्यंत हर्ष होता है उसके न मिलने में व्याकुलता होती है, जिसकी आवश्यकता होती है उसके न मिलने पर व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है। जो चाहते हैं वो न होने पर बेचैनी होती है। रेल में जाने वाले हैं, जरा सी देर हो गाड़ी छूट गई, दुख होता है कि नहीं, बड़ा दुख होता है। तो ये कसौटी है। अगर हम भगवत प्रेम को चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान का मिलन चाहते हैं, तो छटपटाहट आपके मन में होती होगी, व्याकुलता होती होगी। अगर नहीं होती है तो चाहते नहीं है, इसी भी बात। चाहते हैं इसकी परीक्षा क्या है, आप व्याकुल हैं कि नहीं। चाहते होंगे तो न मिलने पर व्याकुल होंगे, स्वाभाविक बात है। अगर व्याकुल नहीं होते तो इसका अर्थ साफ साफ है, स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं। तो भगवान की चाह पैदा करना ही साधना का फल है, भगवान का मिलना नहीं। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य और उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए कोई विधियों की आवश्यकता नहीं है। इतना लाख जप करने पर भगवान मिल जाए ये ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन इतने लाख की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान संख्या से नहीं मिलते, भगवान क्रिया से नहीं मिलते। भगवान के लिए कोई बंधा मोल तोल थोड़ी है, इतने मोल में मिल जाएंगे भगवान, वो तो चाह से मिलते हैं। जिसकी जैसी चाह, जो भगवान के लिए जितना अधिक व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतने अधिक व्याकुल होते हैं। जो भगवान से जितना शीघ्र मिलना चाहता है उससे भगवान उतना ही शीघ्र मिलना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें केवल एक बात देखनी है कि हमारी चाह है कि नहीं, तो चाह बढ़ाना है। वेदांत में भी यही बात है, अद्वैत वेदांत में, वेदांत सारे ही हैं, वहां पर भी मुमुक्षुता की आवश्यकता है। जब तक तीव्र मुमुक्षुता नहीं जागृत होता तब तक मोक्ष नहीं मिलती। शंकराचार्य जी जिन्हें इसके भेद की सर्वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में मुमुक्षा के भेद किए हैं, तीव्र तीव्र तर तीव्र तम, फिर स्थिर मध्य है मंद है, उनके जो तीन तीन भेद है। तो मध्य मंद मुमुक्षा है, बड़ी अच्छी बात, चलो सब कहते मोक्ष मिल जाए, आसमान मिल जाए, पर मोक्ष के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, तब तैयार नहीं, तब तैयार नहीं। तो ये मंद मुमुक्षा है, तीर मुमुक्षा वो है कि बस मोक्ष चाहिए कुछ ही चाहिए। इसी प्रकार भगवान के प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर होती, तीव्रतम होती है और अनन्य होती है। दूसरी चाह नर है और ये चाह अत्यंत तीखी से तीखी हो जाए, बस भगवान की प्राप्ति का वही शुभ बेला है। फिर वहाँ देश काल पात्र की कोई भी भेदभाव की आवश्यकता नहीं, वो पात्र कौन है, वो देश कौन सा है और वो काल कौन सा है। देश काल पात्र ये जगत की वस्तुओं के लिए आवश्यक होते हैं, भगवान के लिए सर्वदेश सर्वदेशिक भगवान है, सार्वकालिक भगवान है और सबके भगवान है। भगवान किसी एक देश में बंधे हुए हैं या दूसरे में न हो तो वो अल्प भगवान, वो भगवान भगवान का है कहें। भगवान तो सर्वदेशी हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वत्रिक हैं और सबके लिए हैं। तो भगवान कहाँ कब किसको नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं जो चाहे उसको। तो भगवान की चाह ये सबसे बड़ी आवश्यक चीज है जीवन में साधक को पैदा करने की। ये जितने जप तप होते हैं ना, ये सब इसी बात के लिए होते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी रखते हम, भगवान को प्राप्त करने की एकांत चाह उत्पन्न हो जाए हृदय में। इसीलिए दूसरी सारी चाह मिल जाए, निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है, कुछ भी न चाहो और भगवान से प्रेम करो, भगवान की सेवा का काम करो, बात वह की जाहु न चाहिए कदम कछु, तुम सन सहज सनेह, दसहु निरंतर पास उर सो राव उर निज गेह। भगवान के अपने रहने का घर कौन सा, अपना घर, रहने का घर नहीं, आ गए तो कहीं थोड़े दिनों के लिए बस जाए, भाले वाले पर लेंगे मिले मांग कर ले लें कुछ दिनों के लिए, किसी को उनको मेहमान बना ले, ऐसा बात नहीं। सो राव निज गेह, एक घर वो निकाम ऐसा बताते महाराज, वो घर आपके लायक है सो नहीं, आपका ही है, आपका अपना घर है, उसमें आकर आप औरों में निरंतर नहीं कहा, बसो निरंतर, अपना घर है भाई, अपने घर में बसने में संकोच कैसा, अपने घर में बसने में भय कैसा, अपना घर है तो वो अपना घर है। तो कौन अपना घर है, किसका मन अपना घर है, जाहु न चाहिए कदहु कछु और तुम सन सहज सने। बड़ी सुंदर चीज हृदय में घर लेने की है कि आधा दोहा जीव में उतर जाए भगवान आपके हो जाएंगे, पक्की बात गारंटी, ये आधा दोहा हृदय में बसा लीजिए भगवान आपके हो जाएंगे, निश्चित आपके हो जाएंगे। जाहु न चाहिए कदहु कछु और तुम सन सहज सने, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी और कभी दोनों चीज है बोला, जाहु न चाहिए कदहु कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए। और फिर प्रेम क्यों करता है कि प्रेम किए बिना रहा नहीं जाता, सहज प्रेम है, किसी हेतु को लेकर, किसी कामना को लेकर, किसी गुण को देखकर, किसी रूप सौंदर्य को देखकर, किसी महत्व को देखकर, बोले ना सहज स्नेह है, जिसका तुमसे सहज स्नेह है और जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, उसका मन हे राघवेंद्र तुम्हारे रहने का अपना घर है, तुम उसमें सदा के लिए बस जाओ। तो क्या भाव है, एकांत इच्छा, दूसरी सारी इच्छाओं का सर्वथा विनाश करके जब मनुष्य केवल भगवान को चाहता है तो पूर्व के किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, किसी भाव की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं मिल जाते। और फिर तो वो और कहता है, इससे आगे की एक और बात है, ये बात है कि भगवान के मिलन को नहीं चाहता, ये बड़ी विलक्षण चीज है। जो जो मिलन भजन को रोक दे वो मिलन प्रेमी के लिए वांछनीय नहीं है। जो मिलन भजन में बाधक हो जाए वो मिलन भक्त को वांछनीय नहीं है। भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। बोले आप मिल जाए और मैं आपका भजन छोड़ दूं, ऐसा मिलना मुझे नहीं चाहिए, आप न मिले तो क्या होता उसका परिणाम? भगवान स्वयं चाहते हैं हम मिले, बुला लेते हैं, हो आते हैं सब तरह। ब्रजनी दो प्रकार के भक्त देवियों का वर्णन है। एक जो केवल और केवल भगवान को चाहती हैं और एक भगवान के साथ साथ जगत को भी चाहती पर भगवान को चाहती। ये है यज्ञ पत्नियाँ। बड़ा सुंदर इनका इतिहास है। ये ब्राह्मण पत्नियाँ, ऋषि पत्नियाँ घरों में रहती, सारे वेदज्ञ इनके पति थे, यज्ञ याग घरों में होते, भगवान यज्ञ भगवान का नित्य पूजन होता, अग्निहोत्र होते, तमाम वैदिक आचरण घर में होते रहते, बड़ी प्रसन्न रहती, पर इनके मन में कसक थे। इन्होंने श्री कृष्ण के संबंध में ये सुन रखा था कि साक्षात भगवान है और इनसे वो मिलना चाहती थी, दर्शन करना चाहती थी, पर इनका ऋषि का घर दिन रात इनके घर में वैदिक कर्मकांड होता रहे और उसमें स्त्रियों की बिना काम न चले, वो पार्श्व भागिनी होनी चाहिए और यज्ञ की सारी तैयारियां घरों में करनी चाहिए, इन्हें अवकाश ही नहीं, पर इनका चित्त व्याकुल रहता। किसी प्रकार ऐसा मौका दे श्याम सुंदर कभी उनके दर्शन हो जाए। ये ब्राह्मण देवियां इस प्रकार मनो में निरंतर कामना किया करती, बड़ी कामना। इधर यज्ञ हो रहे हैं, इधर उनका मन भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, कैसे भगवान से मिलन हो जाए। उन्होंने मन में किया भाई जंगल में तो आते हुए ना, कभी हमारे यज्ञ की तरफ आ जाए, जब यहाँ जब हमारे यहाँ भोजन होता हो और उस समय इनको हम भोजन करवा दें। फिर डर लगा पतियों का कि भाई ये सब अहिरों के लड़के, सब बे पढ़े लिखे लोग, ये अगर यज्ञ में आ जाए, ये हमारे पंडित जी लोग कह देंगे नहीं 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 जमाएंगे, तब तो बहुत बड़ा हो, डर भी जाती हुआ। यही पहले मन में आता फिर क्रिया में आता। एक दिन मंगलमय प्रभात भगवान पधारे जंगल में, अरण्य में भगवान गए अपने सखाओं के साथ। अब भगवान की लीला घरों से छाक आने में देर हो गई, कभी स्वयं जाते और कभी पीछे से घरों से आते। उस दिन लाए नहीं, सारा तो बना बनाया प्रोग्राम था ना पहले से, नित्य मात्रम भव सदो साचल, सारी फिल्म बनी हुई रहती है उनकी, ये तो खाली उभारते हैं, तो पहले से सारी बनाई हुई चीज लाए नहीं। उस दिन देर हो गई तो सखाओं ने कहा कन्हैया भूख लगी कन्हैया, तो कन्हैया बोले हम कहा करें भूख लगे थे, कह नहीं लाए घर से, तो कहा कि तू नहीं तो कह दिया था आज मत ले चलो, नहीं लाए तो बोले अच्छा काम करो। थोड़ी दूर पर ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण वेदज्ञ यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भगवान के लिए प्रसाद बना है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, तो तुम जाओ और कह दो वहां पर देवताओं से, दिगों से, बीज भूदेव होते हैं पृथ्वी के देवता, इनसे कह दो जाकर भूदेवों से कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ जंगल में आए हुए हैं वन में और उन्हें बड़ी भूख लगी कुछ खाने को दो। तो बच्चों ने कहा दे दोगे ना, वो कहा तुम जाओ तो सही भैया, देखो मांगो, भूख लगी तो क्या चेष्टा करनी चाहिए। तो भूख लगी थी बेचारे गए वहां, तो बस ये आहुति तो लग रही है, स्वाहा स्वाहाकार हो रहा है, सब वेद की ध्वनि हो रही है, बड़ा सुंदर वातावरण, वो युद्ध धूम से तमाम आकाश आच्छादित है, बड़ा सुंदर। ज्यादा बचा रखे रह गए, बोले नहीं पहले तो। पंडित जी लोग कभी सामने देखे तो बोले, एक पंडित ने देखा बोले क्या अरे क्या करो, तो बोले हमारे कन्हैया को बड़ी भूख लगी है, वो वन में है। तो कौन कन्हैया? अरे बोले हमारे कन्हैया, हमारे विकेट में, हमारे श्याम सुंदर, उनको बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल गया बोलो यहाँ से, यज्ञ हो रहा है कि तुम लोगों को कोई दान खोल रखा है, बोलो जाओ। बेचारे डर के मारे भाग गया, भाग आए आकर के बोले महाराज मार तो रही पड़ी, भाग तो आए लेकिन खाने वाने कुछ मिला नहीं। तत्कार बोली, बोले ऐसी बात, बोले ऐसी बात, बोले अच्छा एक काम करो, ये जहाँ यज्ञ होता है उस तरफ न जा करके और पीछे के रास्ते से चले जाओ घरों में, और घरों में जा करके वो देवियां हैं ब्राह्मणी, इनसे जाकर के कहो कि माता भूख लगी है श्री कृष्ण को और खाने को चाहिए। तो बोले घर में गया तो वो फिर बांधे नहीं, ये तो घर के बाहर का हाल है। बोले बोले पंडितों के पास मत जाना, देवियों के पास जाना। बोले ठीक। अब ये गए साथ, डरते डरते गए, अंदर गए तो देवियों देखा ब्राह्मणी ने, बजे उनके सखा से बोले आओ 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 भाई, आओ बच्चा, आओ बेटा, क्यों आए, कैसे आए? अब तो सोचा गया तो बड़े प्रेम से बोलती, आओ आओ भूख लगी है क्या? बोले हाँ भूख तो बहुत लगी है, हमारे कन्हैया को भूख लगी है और उन्होंने खाने को मांगा है और हम भूखे नहीं। बोले सच्ची बात? बोले हाँ। चलो सब ने तैयारी कर लिए, थाल भर लिए, पकवानों के थाल भर लिए, थाल भर भर के सब देवियाँ तैयार हो गई। सैकड़ों देवियों ने उठाए थाल, बड़ा चाल चले सब। एक को नहीं जाने दिया, एक ब्राह्मणी को नहीं जाने दिया, एक देवता ने उस ब्राह्मणी को भगवान के वियोग में इस प्रकार की छटपटाहट हुई कि उसके प्राण निकल गए। वो पहले जा पहुंची, सदैव जा पहुंची वहीं पर, ये थाल ले लेकर के चली गई भगवान के पास। वहाँ भगवान ने स्वागत, वो वहाँ भागा। यही बात जोतू से कही थी, कहा बस तू क्यों आई, लौट जाओ। तो उन्होंने ये कह दिया कि फिर हमारे घर वाले नाराज हो जाए, तो नाराज नहीं होंगे, लौट जाओ। तो लौट गई, यहाँ वो बात नहीं हुई थी ये भेद। तो कर्म में वो भगवान को प्राप्त करने की मिलने की आकांक्षा थी, तो भगवान ने उनको बुला लिया। बुला करके जब ये लौटी तो ये ब्रह्म सानिध्य हो गया ना, भगवत साक्षात्कार हो गया। भगवान ने श्रीमुख से उनसे बातचीत कर ली, उनका दिया हुआ नैवेद्य स्वीकार कर लिया, उनको बड़े सुंदर शब्दों में अपना लिया। तो भगवान की अपनाई हुई वो यज्ञ देवियां वो महान दिव्य तेज से समुद्भाषित हो गया उनका मुख मंडल, उनके अंदर से दिव्य आभा निकलने लगी। वो जब पहुंची उनके पास ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों को ठीक ठीक मालूम दिया कि धन्य जीवन तो इनका है, ये धन्य हो गई, हमारा ये यज्ञ कुछ नहीं। दिग जन्म दिग त्रिविध विद्या दिग व्रतम दिग बहुग्यता दिग क्रियम दिग कुलम दिग क्रिया दाक्षण दुखाए तो भूख सके। कहा हम भगवान से विमुख, पश्चाताप हुआ, हम भगवान से विमुख और ये भगवान के सम्मुख हुआई, हमारे जन्म को धिकार, हमारे द्विजत्व को धिकार, हमारे व्रत को धिकार, हमारी बहुत जानकारी बहुविद्या को धिकार, हमारे कुल को धिकार और हमारे इस यज्ञ क्रिया को धिकार, जो हम भगवान से विमुख रहे। ये चीज तो भगवान की इच्छा करने पर जिस प्रकार की हमारी इच्छा होगी उसी प्रकार से उतने रूप में हमें भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति में विलंब जो कुछ है वो चाह के अभाव का विलंब है, चाह की कमी का विलंब है। और चाह की कमी है कि नहीं, इसकी कसौटी हम सब के पास है, हमारे मन में व्याकुलता है कि नहीं। जिस वस्तु को हम चाहते हैं और उत्कटता हमारे मन में है तो उसके अप्राप्त रहने में दुख होगा ही। अगर दुख नहीं है, बेचैनी नहीं है, किसी का पुत्र बीमार है, मरना सन्न है, प्यारा बेटा, उसको कितनी व्याकुलता है उसके बचाने के लिए, किसी का फर्म फेल हो रहा है इज्जतदार का, उसको कितनी व्याकुलता है बचाने के लिए, ये तो सारा फर्म फेल हो रहा है। यहाँ पर तो मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है ना, इससे बढ़कर जीवन का फेलियर क्या होगा? और आप जीवन की असफलता क्या है? मानव जीवन का सारा दिवाला निकल जाता है यहाँ पर, कुछ नहीं उसने कमाया, सब खो के जा रहा है और दुख नहीं होता उसको, तो चाह कहाँ है? सच्ची बात चाह कहाँ है? तो अपने मन में भगवान की चाह पैदा करनी चाहिए। जितने साधन हो इस चाह पैदा करने के लिए, अगर चाह नहीं हुई तो महाराज होगा धीरे धीरे, भगवान के नाम से होगा, भगवान के जप से होगा, सत्संग से भी होगा, तीर्थ स्नान से भी होगा, सबसे होगा, किसी का खंडन नहीं। पर ये चाह पैदा करेंगे, ये चाह पैदा करेंगे मन में तीव्र कर भगवान से मिलन की चाह, भजन की भी चाह होती है। बहुत लोग पूछते भजन नहीं होता, क्या साहब होता नहीं? अरे होता नहीं कि करते नहीं, बोले करना चाहती होता नहीं, ये बात समझ नहीं आती। जिसको धन की चाह है उसको धन की याद नहीं रहती, ये कैसे माना जाए? ये तो सबका अनुभव है। जिसको प्यास लगी है उसको पानी की याद नहीं, कैसे माना जाए? जो अत्यंत भूखा है वो भोजन को भूल जाए, ये कैसे माना जाए? सीधी सी तो बात है। यदि हमारे मन में चाह है, यदि हमारे मन में चाह है तो हम भूल नहीं सकते। भजन की चाह यदि है तो भजन हुए बिना तो फिर ये प्रश्न नहीं बनता कि साथ भजन होता नहीं, क्या करें? होता क्यों नहीं? भजन तो होने की चीज है जरूर, पर होने की चाह होनी चाहिए। भजन के बिना व्याकुलता हो जाए और हो रही, ये लक्षण बताया है नारद जी ने